நமோ அரியந்தாளம், நமோ சித்தாளம், நமோ ஆரியாளம், நமோ வஜ்ஜாயாளம், நமோ லோய சப்பசாவுளம். மங்களம் பகவான் வீரோ, மங்களம் கௌதமோகணி, மங்களம் குந்த குந்தாத்யோ ஜெயன் தர்மோஸ்து மங்களம். சர்வ மங்கள் மாங்கல்யம், சர்வ கல்யாண காரகம், பிரதானம் சர்வ தர்மானாம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம். மங்கள்மே மங்கள்கரணம் வீதராக விஜான், நமோ தாஹி ஜாத்தே மஹே அர்ஹந்தாதி மகான். கரிமங்கள் கரிஹோ மகா கிரந்த கரண் கோ காஜ, ஜாத்தே மிலே சமாஜ சவ பாவே நிஜ பதராஜ். மோட்ச மார்க் பிரகாசக் கிரந்த விராஜமான ஹே, இஸ்மே பண்டித டூடர்மல்ஜி துவாரா ரகசியபூர்ண சிட்டி, ஜிஸ்மே சுத்தோபயோக் கி ரகசிய கா வர்ணன் ஹே, ஆராதனா கா விஷய ஹே, பஹுத் சாந்தி கா விஷய ஹே, அலௌகிக விஷய ஹே. கபி கபி ஐசா பி ஹோதா ஹே கி விஷய அச்சா ஹோ லேகின் ஹமாரா லக்ஷ்ய அன்ய ஹோ தோ விஷய நஹீ சுஹாதா. இஸ்லியே பாத்ரதா கி பி பஹுத் படி ஆவஷ்யக்தா ஹோதி ஹே. பாத்ரதா நா ஹோ தோ அத்புத விஷய பி சமஜ் மே நஹீ ஆதா, மன் நஹீ லக்தா உஸ்மே. விஷய யே சல் ரஹா ஹே, கோயி ஜீவ் சவிகல்ப சே நிர்விகல்ப கேசே ஹோகா. யத்யபி யஹா சர்ச்சா ஜ்ஞானி கி ஹே, ததாபி அஜ்ஞானி பி நிர்விகல்ப ஹோகா தோ இசி விதி சே ஹோகா, கோய் தூசரி விதி நஹீ ஹே. ஏக முனிராஜ் சட்டே சே சாத்வே குண ஸ்தான் மே ஆயங்கே தோ இசி விதி சே ஆயங்கே. ஏக் ஜானி சுபாசுப் பாவோ சே ஹட்கர் தியான அவஸ்தா மே ஆயேகா தோ இசி விதி சே ஆயேகா. ஓர் கோய் அஜ்ஞானி நிர்விகல்ப ஹோகா பிரதம் பார் தோ பி வோ இசி விதி சே ஹோகா. ஏக் பசு பி நிர்விகல்ப ஹோகா தோ இசி விதி சே ஹோகா. ஏக் ஆட் வர்ஷ கா பாலக் நிர்விகல்ப ஹோகா தோ இசி விதி சே ஹோகா. விஷய கடின் நஹீ ஆனந்ததாயி ஹே, க்யோன்கி ஜிஸ்கா ஃபல் ஆனந்த ஹோ உஸ்கே காரண மே கஷ்ட கேசே ஹோ சக்தா ஹே. பாத் யஹான் தக் பஹுஞ்சி தி கி தே சம்யக் திருஷ்டி ஸ்வரூப் தியான் கர்னே கா உத்யம் கர்த்தா ஹே. உத்யம் உசி சீஜ் கா ஹோதா ஹே ஜிஸ்கி ஆவஷ்யக்தா ஹோ. க்யா போலா? உத்யம் உசி சீஜ் கா ஹோதா ஹே ஜிஸ்கி ஆவஷ்யக்தா ஹோ. ஜிஸ்கே பினா ஹம்கோ ஜீனா முஸ்கில் லகே உஸ் சீஜ் கா உத்யம் ஹோதா ஹே. யதி தர்ம க்ஷேத்ர மே ஆத்ம அனுபவ கா உத்யம் ஹம் நஹீ கர்தே, இஸ்கா மத்லப் யே ஹே கி ஹமே உஸ்கி ஆவஷ்யக்தா நஹீ லக்தி. ஜ்ஞானி இஸ்கே பினா ரஹ நஹீ சக்தா, க்யோன்கி யஹி தோ முக்ய ஹே. முக்ய கா யஹி சர்வஸ்வ ஹே, முக்ய ஓர் கௌண கா பி பிரஷ்ன கடா நஹீ ஹோதா. சித்தோபயோக் கே கால மே வஹி சர்வஸ்வ ஹே, ஜ்ஞான மே முக்ய கௌண ஹோதா ஹே. லேகின் ஜப் தியான் கே கால மே ஆத்மா சர்வஸ்வ, வோ தியான் ஐசா விசார் நஹீ கர்தா கி மே ஆத்மா கா தியான் கர் ரஹா ஹூன் ஓர் யே பர பதார்த்த ராகாதி கௌண ஹே. யதி தியான் கே கால மே ஐசா விசார் ஆ ஜாயே கி ராகாதி கௌண ஹே தோ முக்ய ஹோ கயி. இஸ்லியே वही सर्वस्व है, वही माने मैं ही सर्वस्व हूं, ऐसा कह देने से कोई पर्याय गायब नहीं हो जाती। देवशास्त्र गुरु चले नहीं जाते, उनका कोई अपमान नहीं हो जाता, लेकिन केवल ज्ञान करने की यही विधि है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि अभी हम यहीं बैठकर प्रयोग करें तो समकित लेकर ही उठेगा पक्का, लेकिन रस समकित का नहीं होना चाहिए, रस रुचि का नहीं होना चाहिए। रस जो त्रिकाल विद्यमान चैतन्य तत्व मैं स्वयं हूं उसका रस होना चाहिए। तो स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी होता है अपने को चैतन्य चमत्कार मात्र मानता है। जहां वचनों से समस्त महिमा समाप्त हो जाए, कभी कभी किसी चीज की महिमा यदि हमें करना हो तो वचन उसके लिए कम पड़ जाते हैं। प्रथम गाथा में ही ऐसा कहा, कुंद कुंद प्रभु ने ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों को नमस्कार किया। अनुपम माने जिसकी कोई उपमा नहीं की जाए। यदि आत्मा की उपमा किसी अन्य पदार्थ से या अन्य पर्याय से हो जाए तो वह पदार्थ बड़ा हो गया जिससे उपमा दी गई, इसलिए वो अनुपमेय तत्व है। किसी चीज से तुलना उस चैतन्य तत्व का तिरस्कार है। वो चैतन्य तत्व मिलता नहीं है फिर उस जीव को, इसलिए वो चैतन्य चमत्कार मात्र है। इसी को अन्य आचार्य ज्ञानी भगवंतों ने चिदमात्र कहा है। चिदमात्र जाप है ऐसा का ऐसा, तो चिदविलास ग्रंथ में चिदोस्मी, मैं चिदमात्र हूं। चितमात्र क्योंकि चिंतन में कुछ शब्द तो प्रदान करना पड़ेगा। ध्यान देना, चिंतन जब भी होता है शाब्दिक ही होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत का निमित्त निमित्तिक संबंध होता है। लेकिन जब तक वो चिंतन शब्दों को ग्रहण करता रहता है तब तक स्थूल कहलाता है। धीरे धीरे वो चिंतन गहरा होता चला जाता है, चिंतन फैलना बंद कर देता है, समट जाता है। आप विज्ञान पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे, दो तरह के लेंस होते हैं। इंग्लिश में मुझे नहीं पता, हमारी शिक्षा तो बाहर में संस्कृत और उर्दू में हुई है, प्रारंभ में उर्दू में और बाद में संस्कृत में, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ा। एक लेंस को बोलते उत्तल लेंस और एक को बोलते अवतल लेंस। फैले हुए प्रकाश को संकीर्ण करता है और एक लेंस ऐसा होता है कि संकीर्ण प्रकाश को फैलाता है। तो सूर्य का प्रकाश उस लेंस को रखो तो उसको समेट देता है और वो एक धारी बन जाती है और एकदम लाल रंग का प्रकाश हो जाता है। फिर उसमें माचिस की तीली रखो तो वो जल जाती है। उसी तरह शुद्धोपयोग के काल में, ध्यान के काल में फैला हुआ ज्ञान संकीर्ण हो जाता है। ज्ञान स्वभाव नष्ट नहीं होता, ज्ञान जानने की इच्छा नष्ट हो जाती है। जिस समय जीव निर्विकल्प होता है उससे पूर्व वाली पर्याय ये भी वांछा नहीं करती कि मैं स्वरूप को जानूं, क्योंकि जानने की इच्छा और जानना इन दोनों में विरोध है। मेरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यदि अंदर समाने वाली पर्याय ऐसी वांछा करे कि मुझे अंदर समाना है तो तीन काल भी नहीं समा सकती, क्योंकि समाने की इच्छा और समाने की प्रक्रिया इन दोनों में विरोधाभास है। सत्य तो यह है, ज्ञान स्वभाव त्रिकाल चैतन्य प्रभु में विद्यमान हूं, उसमें ये वांछा भी करना कि मुझे मेरे अंदर जाना है, ये भी पागलपन है। अलग ही है ये। एक योगी आसन बनावे, आसन कहते भोजन को और अनशन कहते उपवास को। एक योगी आसन बनावे, खुद ही खावे खुद ही बनावे, खाते नाही अघावे। एक योगी आसन बनावे, ये दुनिया की सबसे अभूतपूर्व घटना है, निर्विकल्प अवस्था। अभी हमारे तुम्हारे विकल्प तो पाप के विकल्प हैं, जगत के विकल्प हैं, भविष्य के विकल्प हैं। यहां तो ये कहते हैं कि शुद्धात्मा का चिंतन, वो भी निर्णयात्मक, संशयात्मक नहीं। संशयात्मक विकल्पों की चर्चा यहां नहीं है। मैं स्त्री हूं, मैं पुत्र हूं, मुझ में मकान नहीं, मुझ में दुकान नहीं, मुझ में सुख है, ये सब स्थूल विकल्प हैं, ये उनकी चर्चा नहीं है। यहां तो ऐसा कहते हैं कि परनो विचार छूटी गया, पर का विचार छूट गया, पर के विचार में थकावट है। पर का विचार वहां तक है जहां तक जीव अतृप्त है, अतृप्त जीव को कभी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। पर का विचार वही तो करेगा जिसे पर से आशा होगी, जिसे स्व में ही सर्वस्व नजर आ गया, वो पर का विचार क्यों करेगा। यदि यह विषय सुनने में शोक आता है तो समझना दिशा गलत है, और ये विषय सुनने में भी आनंद आता है तो समझना कि इस जीव को पर की आशा मिट गई है। तो जब पर की आशा मिट गई तो पर का विचार क्यों चलेगा, क्यों चलेगा पर का विचार। सोगानी जी का एक बोल है, बहुत अद्भुत, द्रव्य दृष्टि प्रकाश, आपके यहां स्वाध्याय हुआ कभी, वो बोल पढ़ना पूरे। इसलिए गुरुदेव श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ बहुत पात्र जीवों को अपने हाथ से देते थे। तो उसमें एक बोल आया, भाई किसी ने पत्र में पूछा उनसे, भाई जी आत्मा की रुचि तो करना है ना। तो कहते लगता है तुम्हें रुचि की रुचि है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, रुचि बड़ी है या ज्ञायक बड़ा है। रुचि नहीं करना एम नथी, रुचि तो आत्मा की करनी पड़ेगी, लेकिन कभी कभी रुचि करनी पड़ेगी इस चिंतन में रुचि की ऊर्ध्वता हो जाती है और ज्ञायक साइड में पड़ा रह जाता है, माने मैं पड़ा रह जाता हूं। रुचि भी क्या चीज है, ज्ञायक की स्वीकृति ही तो रुचि है, और क्या चीज है रुचि, और किसे कहते हैं। ज्ञायक की तो स्वीकृति ही रुचि है, परम अध्यात्म है ये, मोक्ष जाने के लिए पर्याप्त है ये। 45 वर्ष इसी ज्ञायक के गीत गाए हैं गुरुदेव श्री ने, इसी जगत का सारा अध्यात्म जहां समाप्त हो जाता है वहां ये प्योर अध्यात्म शुरू होता है। हम फल की रुचि करते हैं, लेकिन जिसके लक्ष्य से फल प्राप्त होता है उसकी रुचि नहीं करते। भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो। इसलिए चिंतन नहीं करना मुझको, बल्कि उसका चिंतन सच्चा होता है कि जिसके चिंतन में चैतन्य होता है, तो जिसके चिंतन में चैतन्य होता है उसका चिंतन नष्ट हो जाता है और चैतन्य रह जाता है, और जिसके चिंतन में केवल चिंतन चलता है उसके चिंतन ही चलता है, चैतन्य कभी प्राप्त नहीं होता। चिंतन और चैतन्य ये दोनों विरुद्ध तत्व हैं। चिंतन आश्रव तत्व है और चैतन्य जीव तत्व है। यद्यपि निर्विकल्प होने से पहले चैतन्य का चिंतन चलता है, लेकिन उस चैतन्य के चिंतन में चिंतन नहीं होता, उसमें चैतन्य की महिमा होती है। भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बोलो, निंदिया आ रही है क्या? यहां भी आकर सोओगे तो जागोगे कहां? नींद चली जाए ऐसी चीज है। इसलिए मुनि भगवंतों को अंतर्मुहूर्त निद्रा, गुरुदेव श्री तो ऐसा फरमाते हैं, यदि अंतर्मुहूर्त भी पूरी निद्रा आ जाए तो गुणस्थान गिर जाए। सोत्या हमको अधिक निद्रा क्यों आती है? क्योंकि हम देह में मूर्छित हैं, देह में मूर्छित हैं, इसलिए हमको अधिक निद्रा आती है। अपने पंच कल्याणक में एक बोल ऐसा भी डाला था मुनिराजों की सभा में, एक इंद्राणी ने इंद्र से प्रश्न किया, हे चैतन्य जागृत, चैतन्य में जागृत है ना योगी तो सदा, मुनिराज को अधिक निद्रा क्यों नहीं आती? तो देव उत्तर देता है, जैसे किसी राहगीर के पास रत्न हो, और रत्न डायमंड, और वो रास्ते में बिहार जा रहा है, रात्रि हो गई, जंगल में सो जाता है, तो उसे निद्रा आएगी या नहीं आएगी? ऐसी मुनिराज के पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्न है, जैसे उस राहगीर को रत्न लुट जाने की डर की वजह से निद्रा नहीं आती, उसी तरह मुनि भगवंत को इस संसार में रत्नत्रय खो जाने के डर से निद्रा नहीं आती। वो तो चरणानियोग का है, लेकिन यहां तो उस स्वरूप में जागृत हो गया तो निद्रा का प्रश्न कहां होता है? निद्रा का प्रश्न कहां होता है? प्रयोग करो, प्रयोग अभी करो, सारी प्लानिंग, भविष्य फ्यूचर की प्लानिंग, उनमें माचिस की देसलाई तीली देकर आग लगा दो, एकदम प्रयोग करो यहीं बैठकर, क्योंकि ये भविष्य की प्लानिंग की ग्रंथि इस जीव को आगे नहीं बढ़ने देती। मैं जब निवृत्ति लूंगा तब आत्म कल्याण करूंगा, वो निवृत्ति कभी अनंत काल में नहीं होने वाली, क्योंकि जिस निवृत्ति की तू बात करता है वो उदयाधीन है। तू सबसे पहले अभी अपने स्वरूप को निवृत्त देख, निवृत्त देख, मैं परिणाम मात्र से निवृत्त हूं। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर पंडित टोडरमल जी प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा लगता है इस ये पूरी रहस्यपूर्ण चिट्ठी का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। सविकल्प से निर्विकल्प, विकल्पों से निर्विकल्प नहीं हो रहा, बल्कि विकल्पों के अभाव पूर्वक निर्विकल्प हो रहा है। लेकिन जब निर्विकल्प हुआ तो उससे पूर्व के विकल्प कैसे होते हैं ये बता रहे हैं, और उसको ये कहने में आया कि सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होता है। घर में यही प्रयोग करना है, बाकी सब छोड़ो, वो उदयाधीन है, उदयाधीन है। हमें उदय का भी विश्वास नहीं है, सत्य तो ये, हमें ऐसा लगता है कि यदि हम व्यापार धंधे में उपयोग न लगाएंगे तो उसका क्या होगा, कि बढ़िया है वो जितनी जल्दी बिगड़े उतनी जल्दी अच्छा है, क्योंकि इधर समय मिलेगा। क्या क्या हुआ आगे, आगे क्या होता है? अनेक केवल स्वात्म विचार अज रहे छे, वो स्वात्म विचार कैसा रहता है? त्या निज स्वरूप मां अनेक प्रकार नी अहम बुद्धि धारे छे। अहम बुद्धि, ये अभिमान की बात नहीं चल रही, अहम बुद्धि माने आत्मा अपने में एकत्व करता है। किस तरह से, ये भी अभी विकल्प है, ये भी अभी निर्विकल्प नहीं हुआ, हूं चिदानंद छू, शुद्ध छू, अनिसिद्ध छू, मैं चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं। बस ये इसको बोलते हैं क्षुल्लक धर्मदास जी, और अपने चिद विलास में इसको अजपा जाप कहा है। क्या कहा? अजपा जाप, मुख से जाप नहीं चलता ये, बल्कि एक सहज, एक गहरा, एक चैतन्य संबंधी विकल्प चलता है। यद्यपि चैतन्य से विरुद्ध तत्व है, ये विकल्प भी चैतन्य नहीं है। शुद्धात्मा का विकल्प शुद्धात्मा से विरुद्ध तत्व है। क्या बोला? शुद्धात्मा का विकल्प शुद्धात्मा से विरुद्ध तत्व है। मुझ में राग नहीं है, मुझ में द्वेष नहीं है, ये तो बहुत स्थूल विरुद्ध तत्व है। और मुझ में राग है, मुझ में द्वेष है, ये चर्चा तो करने लायक ही नहीं है। हमारे बाबूजी ऐसा बोलते हैं, स्वर्गवास हो गया युगल जी बाबूजी, उन्हीं के निमित्त से गुरुदेव श्री का परिचय हुआ हमको, हम तो जानते नहीं थे, हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय। तो कहते हैं कि निर्विकल्प की बात करे और उस समय ये चिंतन करे कि मुझ में राग है, व्यवहार से है, निश्चय से है, ऐसे जीव को तो अलोका काज भेज देना चाहिए, वरना ये लोक को बिगाड़ेगा। लोक को बिगाड़ेगा ये। बहुत टोडरमल जी ने गजब किया है, गजब। ऐसा गुरुदेव श्री के प्रवचन आज से ही पढ़ो, अभी घर जाके करोगे क्या? करोगे क्या? सत्य तो ये है, मुमुक्षु के संयोग की व्यवस्था देवगण करते हैं। हाँ, ऐसा लिखा है, सम्राट उत्तर भारत में 12 वर्ष का काल पड़ा, 12 वर्ष का। ये उस समय की बात है कि जब पवित्र जिन शासन की दो भेद प्रभेद हो गई थी उस समय, तो आहार नहीं बचा मुनियों को लेने के लिए, तो उस समय भी देवों ने सम्राट चंद्रगुप्त जो मुनिराज बन गए थे, उनको वन में नगर बसाकर 12 वर्ष तक आहार दिया, और उन्हें मालूम ही नहीं था कि देव हमको आहार दे रहे हैं। अरे सत्य तो ये है कि जो आराधना के मार्ग में चलते हैं, उनके बाह्य जीवन की चिंता देव करते हैं, उसे नहीं करनी पड़ती। और साहब देवों ने नहीं की तो क्या होगा? तो अच्छा है, सिद्ध बनेंगे, अच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है? समाधि होगी, अच्छा है, परम समाधि होगी, परम समाधि। मेरा जीवन बाहर से नहीं चलता, मेरे जीवन की सर्वस्व तो मेरे पास है। पर प्रयोग तो करें इसका, प्रयोग नहीं करते। कृपालु देव का एक पत्र है, नंबर मुझे ख्याल नहीं है, मेरे को गांगजी भाई ने दिया था ग्रंथ, उन्होंने आद्योपांत पढ़ा। हर शनिवार को हमारे विद्यार्थियों को हम वो बोल बताते हैं, उसमें एक बोल ऐसा आता है पत्र में कि इतनी सुंदर सर्वज्ञ देव प्रणीत, जिनेश्वर के मार्ग को श्रवण करने पर भी इसमें रुचि जागृत क्यों नहीं होती? तो कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र ये उत्तर देते हैं, हम इस तत्व ज्ञान को बुद्धि का विषय तो बनाते हैं, पर मन का विषय नहीं बनाते। क्या कहा? ये बुद्धि और मन, इसमें अंतर है। क्या अंतर है बुद्धि और मन में? कि ऊपरी बुद्धि में तो हम इसको श्रवण कर लेते हैं, लेकिन मन में हमारे जगत ही बसा रहता है, मन में संशय का सर्प डसा रहता है, मन में ऐसा लगता है कि इस मार्ग में हम आ गई और कार्य की सिद्धि नहीं हुई तो क्या होगा, अपना तो जीवन फोकट में चला गया। कभी कभी जिस धरती पर हम बैठे हैं, वो जिन मंदिर है, स्वाध्याय है, महान पुरुषों के प्रवचन यहां चल रहे हैं, सच्चा तत्व ज्ञान है, पर अंदर किसी कोने में संशय बैठा रहता है। वो संशय इसको आगे नहीं बढ़ने देता, वो संशय इसको प्रयोग नहीं करने देता, क्योंकि ये सर्वज्ञ देव की बात हम मन से स्वीकार नहीं कर पाते, मन से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहां जो बैठे हैं लोग उनके विषय में ऐसा कहना असंभव लगता है। वो आप अपनी जानो, हम हमारी जाने। अब क्या होता है, अब वो उपयोग जो स्थूल था वो सूक्ष्म हुआ। तो सूक्ष्म उपयोग किसे कहते हैं और स्थूल उपयोग किसे कहते हैं? जहां उपयोग पर को विषय न बनाकर केवल स्वात्मा को विषय बना रहा है, ये केवली पर लागू नहीं होता। केवली के ज्ञानोपयोग में तो पर का भी विषय है, स्व का भी विषय है, पर तन्मय स्वरूप में है। तन्मय किस में है? स्वरूप में है। लेकिन छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक जगह रहता है। फरीति कोई दिगंबर मुनिराज स्वरूप में लीन है, उस समय उन पर कोई उपसर्ग कर दे तो बताओ मुनिराज को उपसर्ग का ज्ञान होता है या नहीं? प्रश्न समझ में आया नहीं आया? एक मुनि भगवंत आत्म ध्यान में लीन है। आत्म ध्यान में माने आत्मा में लीन है, ध्यान में लीन नहीं है। ध्यान में, ध्यान ध्येय में ऐसा तद्रूप हो जाता है कि ध्यान को यह पता नहीं रहता कि मैं ध्यान हूं। ध्यान और ध्येय एक हो जाता है। ध्यान और ध्येय क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तो उस समय मुनिराज को उपसर्ग का ज्ञान है या नहीं है? बोलो। ये घटना 12-13 वर्ष पहले है। हम कोटा में थे तो हमारे मुख से ये निकल गया कि ध्यान मुनिराज को ज्ञान होता है, उपसर्ग का ज्ञान होता है। और बाबूजी ने धवला ग्रंथ खोल के मुझे घर पर बताया कि संजय घर पर आना, और उसमें स्पष्ट लिखा कि 12वें गुणस्थान तक, माने जब तक जीव छद्मस्त है तो छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक जगह रहता है। तो जिस समय ज्ञान स्वरूप को भोग रहा है, ये शब्द अच्छा नहीं लगता कि ज्ञान स्वरूप का ज्ञान कर रहा है, इसमें मजा नहीं आता। शुद्धोपयोग के काल में अकेले आत्मा का ज्ञान होता है या उस आत्मा का भोग होता है? भोग। तो वो समस्त गुणों की समस्त पर्यायें उस स्वरूप के साथ ऐसी अभेद हो जाती है कि लोगों को बाहर में उपसर्ग नजर आए लेकिन मुनिराज अंदर आनंद भोगते हैं। आप कहोगे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी एक शब्द आया है कहीं ऐसा कि जहां टोडरमल जी ने यह कहा कि उस निर्विकल्पता के काल में बाहर का भान नहीं होता, ऐसा एक आध शब्द आया है या नहीं आया है? आया है। कैसा शब्द आया है वो खोज लेना आप, कि बाहर में शब्द आदि का भी भान नहीं रहता। कोई नगाड़े बजाए ना नगाड़े, और कैसे नगाड़े जो सेना में बजते हैं भयंकर शोर वाले, उस शुद्धोपयोग के काल में उसका भी पता नहीं पड़ता। उस शुद्धोपयोग के काल में यदि शरीर के कोई सहस्र खंड भी कर दे, निर्विकल्पता के काल में शरीर के सहस्र खंड भी कर दे तो भी उसका भान नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जिस समय व्यक्ति का ऑपरेशन डॉक्टर लोग करते हैं तो उस शरीर को उस स्थान पर सुन्न कर देते हैं और वो ऑपरेशन होता रहता है और उसे मालूम नहीं रहता, तो क्या हमारा शुद्धोपयोग उस ऑपरेशन से भी गिरा हुआ है क्या? तो कछुए की तरह उपयोग समटकर वो उपयोग उपयोगवान में ऐसा अभेद हो जाता है कि बाहर में क्या घटित हो रहा है ये पता ही नहीं पड़ता। कदाचित वो उपयोग स्वरूप में अंतर मुहूर्त ऐसा अभेद समा जाता है कि केवल ज्ञान तक हो जाता है। सत्य तो यह है कि कोई भी मुनिराज केवल ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करती, स्वरूप में अभेद रूप से समाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो केवल ज्ञान तो ज्ञानियों के लिए कुदरत का गिफ्ट है, अरे नहीं आया समझ में, वो स्वरूप में निर्विक निर्विकल्पता का रस नहीं है। रस किसका है? स्वरूप का रस किसका है? अरे भैया समझ में आ रहा है, बोलो। यहां से जाएंगे और विचार चलने लगते हैं, और चीजों की ऊर्ध्वता हो जाती है, आत्मार्थ को पोषण कम मिलता है। क्योंकि यदि आत्मा की प्रेम हमको अनंत होता तो घर पर बैठकर जाते ही सामायिक करता इसमें बैठकर। इसलिए मुमुक्षुओं को कम से कम 3 समय शुद्धोपयोग में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, कम से कम 3 समय, भले बाहर संबंधी उदय कुछ भी हो। भरत जी करते थे, भरत चक्रवर्ती, 6 खंड, घर में ढंग से 2 बच्चे नहीं है हमारे और माथे फटे जा रहे हैं चिंता में। और इधर चक्रवर्तियों की संख्यात पुत्र पुत्रियां होती हैं, कितने संख्यात पुत्र पुत्रियां, हजारों, और कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं। प्रातः काल होते ही अष्टमी चतुर्दशी को चक्रवर्ती भरत गायब हो जाते हैं। मालूम पड़ा क्यों गायब होते हैं? कि उनपे 32 चवर ढूंढते हैं। कितने? तो उन्होंने सोचा कि ये चवर ढूंढते रहेंगे तो मैं आत्मा का ध्यान कब करूंगा, तो उन चवर वालों से बचने के लिए शमशान में बैठ जाते। वो घबराते बेचारे चक्रवर्ती, कहां गए। अष्टमी चतुर्दशी को उनकी 96,000 रानियां महल की छतों पर बैठकर श्वेत साड़ी में आत्मा का ध्यान करती हैं। आकाश से चारण रिद्धिधारी मुनिराज जाते हैं, उनको ये विकल्प आता है, ये आर्यिकाओं का झुंड कहां से आ गया। ये पुण्य तो भूस की तरह बढ़ता है, पुण्य तो किसकी तरह बढ़ता है? यहां कह रहे पुण्य छोड़ो, उस निर्विकल्प ताकि काल में केवल ज्ञान तक हो जाता है, तो मुनिराज उस केवल ज्ञान को आंख उठाकर नहीं देखते, तो उस पुण्य को कौन देखे? उस पुण्य को कौन देखे? वो तो स्पष्ट रूप से परद्रव्य है, उसकी चर्चा कौन करे? इस काल में ये चर्चा भी दुर्लभ है, वरना कौन करे इस चर्चा को? ये तो गुरुदेव श्री ने कर दी तो आप सुनने लायक हो गए और हम बोलने लायक हो गए, वरना तो ये चर्चा करने की भी ताकत किसकी है? कौन करे इस चर्चा को? अब आगे देखना, आगे क्या होता है। इत्यादि विचार तथा, अभी विचार ही चल रहे, निर्विकल्प नहीं हुआ। सहजज आनंद तरंग उठे छे, मेरा प्रश्न है ये आनंद तरंग जो उठी, ये अतींद्रिय है या इंद्रिय जन्य है? भाई जी बोलो ना, ये भी अतींद्रिय न थी, आगे आएगा। लेकिन ये आनंद तरंग जो स्थूल इंद्रिय सुख है उससे हल्का सा भिन्न जाति का है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो उदय होने से पहले दिन निकलता है, उसी तरह उपयोग स्थूल से सूक्ष्म हुआ। शुद्ध हूं सिद्ध हूं, शुद्ध हूं सिद्ध हूं, जिस विकल्प में शुद्ध हूं सिद्ध हूं ये विचार चल रहे हैं, वो विचार भी बहुत सूक्ष्म है। उन विचारों में भी विचार की महिमा नहीं है, उन विचारों में भी जो त्रिकाल चैतन्य परमात्मा कारण परमात्मा उसकी महिमा है, उसकी महिमा है। चैतन्य का प्रेम ही चैतन्य संबंधी विकल्पों से निवृत्त कर देता है। क्या बोला? चैतन्य का प्रेम चैतन्य के विकल्पों से निवृत्त कर देता है। कोई विकल्पों को हटाना चाहे तो विकल्प नहीं हट सकते। विकल्पों की पृथकता, विकल्प पृथक है मुझसे, विकल्प से स्वरूप प्राप्त नहीं होगा, ऐसा विचार ही विकल्पों को नष्ट कर देता है। और ऐसी उस भगवान आत्मा की ऐसी महिमा आती है, उस आत्मा की महिमा ही यदि विकल्प की महिमा हो जाए तो ये तो विकल्प को आमंत्रण हो गया। क्या बोला भैया मेरे, कठिन लग रहा है विषय। विकल्प की महिमा आ जाए तो वो विकल्पों का आमंत्रण हो गया, विकल्पों का आमंत्रण हो गया। परमार्थता देखा जाए तो विकल्प तो शुक्ल ध्यान में भी चलते हैं। मैं नहीं कह रहा, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा है। वो विषय अलग है क्योंकि किसी को प्रश्न हो सकता है, यहां तो सब स्वाध्यायी लोग हैं, कोई मनोरंजन के लिए तो आए नहीं है यहां पर। ये पार्ला मंदिर में जो भी जीव आ रहा है इतना तो पक्का है कि उसे केवल ज्ञान से कम और कुछ नहीं चाहिए, ये तो पक्का है, वरना तो यहां आता नहीं। तो आपने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, तो प्रथम शुक्ल ध्यान में दो शुक्ल ध्यान श्रेणी में चढ़ते समय होते हैं और तीसरा शुक्ल ध्यान तेरहवें गुण स्थान के अंत में होता है और चौथा शुक्ल ध्यान योगों के सूक्ष्म योगों का जब निरोध होता है तो सूक्ष्म करने के लिए होता है। तो उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र लिखा, मैं सूत्र पढ़कर बता रहा हूं आपको। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, माने जिस समय जीव को शुक्ल ध्यान होता है वहां भी अबुद्धि पूर्वक द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर और पर्याय से पर्यायांतर उपयोग जाता है। अब आप यहां ये कह रहे हो कि चौथे गुण स्थान में निर्विकल्प हो रहा है, तो ये प्रश्न हमारे समझ में नहीं आता। कहां उमा स्वामी महाराज ये कह रहे हैं कि छपक श्रेणी में भी शुक्ल ध्यान के काल में उपयोग द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर और पर्याय से पर्यायांतर पर जाता है। और यहां टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि वो निर्विकल्पता के काल में सम्यक दृष्टि को उस स्वरूप में निर्विकल्प हो जाता है, वहां छपक श्रेणी में विकल्प सिद्ध कर रहे हैं और यहां आप शुद्धोपयोग के काल में निर्विकल्प कह रहे हो, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। प्रश्न समझ में आया नहीं आया, बोलो। आ गया होगा प्रश्न आपके समझ में। अब पहले इसका उत्तर, मेरे इसको कल किसी बहन ने ये प्रश्न किया था, इसका उत्तर समझो। जहां उमा स्वामी महाराज ने श्रेणी के काल में भी विकल्प बताए हैं वो अबुद्धि पूर्वक बताए हैं। किस प्रकार बताए हैं? फॉर एग्जाम्पल समझना। जैसे एक तालाब का पानी यदि दूर से देखो तो स्थिर नजर आता है, लेकिन लेंस से उस पानी को देखो तो हल्का हिलता नजर आता है। उसी प्रकार छपक श्रेणी में भी जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक बिना इच्छा के, बिना चाहत के उपयोग अपने स्वभाव के कारण ज्ञान द्रव्य से द्रव्यांतर और गुण से गुणांतर ही जानता रहता है, अन्य द्रव्य को भी जानता है। आपको भी प्रमाण बताओ, समय नहीं है। टोडरमल जी ने निश्चयवासी के प्रकरण में भी लिखा है, रे स्थूल बुद्धि तुझे पता नहीं, ऐसा शब्द लिखा। और यहां जो ये कहा कि आत्मा चौथे गुण स्थान में निर्विकल्प हो जाता है, इसका अर्थ है कि बुद्धि पूर्वक वो उपयोग स्थूल विचारों में अपनी इच्छा पूर्वक पदार्थों को जानने नहीं जाता, बुद्धि पूर्वक वो उपयोग स्वरूप में ही चला जाता है। इसलिए यहां जो कहा कि चौथे गुण स्थान में निर्विकल्प होता है, ये बुद्धि पूर्वक की अपेक्षा की बात है। आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। नींद आ रही है तो सो जाओ, थोड़ी देर प्रयोग कर लो, प्रयोग करो। प्रयोग वही करेगा जिसे स्वरूप का विश्वास होगा। जिसे ये विश्वास ही नहीं है, मैं तो दुखी हूं, हाय राम मर गए हम, हे प्रभु मनुष्य गति हमें उठा लो, अरे मनुष्य पर्याय को कोसो मत, एक बार ही उठना है जीवन में, कि सिद्ध सिला जाना है, बाकी दोबारा नीचे नहीं आना। ये ज्यादा कर्म के उदयों को देख देख कर अपने परिणामों को दीनहीन करना, ये अपना तिरस्कार करना है। वास्तव में आपको प्रश्न और उत्तर दोनों समझ में आए या नहीं आए बोलो। नहीं आए हो तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। छपक श्रेणी में भी विचार सिद्ध किया है वो अबुद्धिपूर्वक की बात है, और यहां चौथे गुण स्थान में निर्विकल्प कह रहे हैं ये बुद्धिपूर्वक की बात है। इतना सा अंतर है। आगे क्या होता है, सहजज आनंद तरंग उठे छे, रोमांच थाए छे। हम तो यही समझ रहे हैं कि इंद्रिय विषयों में रोमांच होता है। गुरुदेव श्री प्रवचन करते समय आहा ऐसा शब्द उल्लास का उनका आता है। हम बोलेंगे तो कृत्रिम लगेगा, उनके तो अंदर से उल्लास आता था। तो बाबू भाई उत्तर भारत में बहुत आते थे, हमने उनको भी नहीं देखा बाबू भाई को, हमारे तो बहुत बाद की बात है। तो विदिशा में किसी ने उनसे प्रश्न पूछा, विदिशा एक जगह है, आपके गुरुदेव श्री आहा क्यों करते हैं? तो बाबू भाई ने उस समय जिस घर में उत्तर दिया उन लोगों ने मुझे बताया, जवाहरलाल बड़कुल बहुत गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त रहे हैं। तो वो बाबू भाई ये उत्तर देते थे वहां लोगों को, जब एक बालक दो पैसे की आइसक्रीम खाकर आहा कर सकता है तो जो वास्तव में ही आत्मा में डूबे हों तो बाहर में उसका उल्लास क्यों नहीं आएगा? वो उल्लास अंदर से आता था। हमें ऐसा लगता है कि विषय कसाय में ही रोमांच होता है। सत्य बात तो यह है कि जैसी ही निर्विकल्प का काल आता है और पर्याय अंदर समाने के लिए तैयार होती है तो एक विशेष जाति का रोमांच आता है। रोमांच समझते हो किसको कहते हैं? रोमांच, ये रोम होते हैं, रोम। और इस शरीर में हमारे 3.5 करोड़ रोम बताए हैं। कितने बताए हैं? तो डर के काल में रोम जो होते हैं हमारे रोम, ये सुकड़ते हैं और आनंद के काल में फैलते हैं। आपने देखा होगा एक कुत्ता, ये बिल्कुल मनोविज्ञान है, एक कुत्ता यदि किसी की रोटी चुरा कर ले आए और फिर खाए उसको तो डर कर खाता है, और यदि मालिक रोटी डाले तो पूंछ हिला हिलाकर भागता है, खाता नहीं है, उसका रोम रोम उल्लसित होता है। भय में व्यक्ति समटता है और आनंद में व्यक्ति फैलता है। ऐसा तो जिस समय वो ज्ञान, वो श्रद्धा, वैसे सम्यक दर्शन तो है ज्ञानी को, तो वो निर्विकल्प होते हैं, तो उस समय एक विशेष जाति का रोमांच होता है। यद्यपि वो दैहिक नहीं है तथापि देह में भी रोम रोम उल्लसित होता है। लक्ष्य देह का नहीं है, एक विशेष जाति का रोमांच होता है। और यदि उस अतीन्द्रिय आनंद के विषय में जानना हो तो संत लाल कविवर से किसी ने पूछा, संत लाल जी का नाम सुना है जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान लिखा है, वो ये लिखते हैं, सिद्धों की एक समय के अतीन्द्रिय आनंद, सिद्धों के एक समय के अतीन्द्रिय आनंद का वर्णन तीनों काल के गणधर, तीनों काल के स्वयं केवली, उस सिद्ध भगवान की पर्याय के आनंद के अनंतवे भाग का वर्णन अनंत काल में कर सकते नहीं। अनंतवे भाग का वर्णन कोई वाणी से तो केवली भी नहीं कर सकती, जान सकते वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा वो विशेष, ये भी जो रोमांच है ये भी अभी इंद्रिय जनित ही है, अतीन्द्रिय नहीं है। अभी आगे आइए और आगे आइए, फिर से सुनना, कभी कभी कुछ जीव उस रोमांच तक भी पहुंच जाता है, लेकिन सोगानी जी की भाषा में उस रोमांच की हर्षाति रेख वृत्तियों में यदि एकत्व हो गया तो शुद्ध उपयोग तक नहीं पहुंच पाता, बाहर आ जाता है। बहुत आनंद आ रहा है हमको, बहुत आनंद आ रहा है, तो गया वो, गया, आनंद आ रहा है। तुझे आनंद दिखाई दे रहा है या ज्ञायक दिखाई दे रहा है? वाणी का तो कोई काम ही नहीं है। आगे क्या होता है? त्यार पछी एवा विचारो तो छूटी जाए। केवा विचारो, जल्दी बोलो। मैं पंडित संजय कुमार हूं, निकलो लोक से बाहर। ये विचार, मैं दुखी हूं कि चर्चा मत करना, चर्चा मत करना, चर्चा मत करना। एक गरीब कन्या की शादी चक्रवर्ती के घर में हो जाए और वो बार बार ये याद करे कि हूं गरीब हूं, हूं गरीब छू, कि तू चक्रवर्ती के घर जाने लायक नहीं है, तू तो झोंपड़ी में ही रहे, चल वापस, तेरे बस की बात नहीं है। ऐसा एक सच्ची घटना है, हरिवंश पुराण में आती है। हरिवंश पुराण में सच्ची घटना है कि एक चक्रवर्ती छत की महलों पर घूम रहा था। वर्षा, भयंकर बारिश हो रही थी, तो उसमें एक गरीब उस वर्षा ऋतु में लकड़ियां एकत्रित कर रहा था, वो और उसकी पत्नी। तो चक्रवर्ती की महारानी चक्रवर्ती से कहती है, महाराज मुझे ये शोभा नहीं देता कि मेरे राज्य में और आपके राज्य में वर्षा ऋतु में से कोई लकड़ियां बीने, इसकी निर्धनता दूर करो। महाराज बोले, ठीक है महारानी जी, बुलाओ आप, उसकी निर्धनता दूर करते हैं। अब वो और उसकी पत्नी राजमहल में आई। चक्रवर्ती ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? और महापुरुष कभी थूक कर नहीं चाटते, समझ में आया आपको? जो वचन मुंह से निकल जाए उसे पूरा करे ही करे। उन्होंने कहा, अब वो घबराए, क्या मांगे, क्या मांगे, क्या मांगे, क्या मांगे, क्या मांगे। उसने पति देव से कहा, तुम मांगो। बोले, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, असंतुष्टि की पिंड तुम ही हो, तुम ही मांगो, क्योंकि मैंने कुछ उल्टा सीधा मांग लिया तो घर में जाके लड़ोगी तो। तुम ही मांगो क्या? अब इसने बहुत दिमाग लगाया, बहुत, यहां की बात नहीं चल रही। हाँ, एक इसलिए लोक में पुरुष को संतोष माना है, संतोषी माना है, और स्त्रियों को असंतोष का पिंड माना है, लौकिक भाषा में, यहां की बात नहीं है। तुम ही मांग लो भगवान, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो, आप खुश रहो बस, इसलिए हमारा जीवन चल रहा है। वो घबराई बहुत, और फिर बोली, हाँ याद आ गया महाराज, याद आ गया, याद आ गया। हाँ तो बोलो जल्दी, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज मेरे घर में झाड़ू टूट गई है, झाड़ू दे दो। सच्चाई हरिवंश पुराण में आया है। चक्रवर्ती ने बहुत कहा, यदि वो एक राज भी मांगती तो राज दे देती, क्योंकि चक्रवर्ती कभी भी किसी के वचन को भंग नहीं करती, वरना तो कहते ही नहीं। और ये चक्रवर्ती काय का यदि वचन भंग कर दे तो, खूब कहा नहीं मानी, तो उन्हें कभी झाड़ू भी दे रहे तो कम अच्छी तो दो, तो सोने की झाड़ू उसको दे दी और वो लेकर चली गई। बाद में उसकी महारानी ने बहुत पूछा, महाराज आप तो राज दे देते तो भी उसने क्यों नहीं मांगा? तब चक्रवर्ती ने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था, जिसका भाग्य फूट गया हो और देने वाला भी तैयार हो और कर्म फूट गया हो तो उसे सही चीज भी मांगने का भाव नहीं आता। तो इधर यदि उस निर्विकल्पता के काल में, सुनना सुनना ध्यानपूर्वक, यदि ये अंतर मुहूर्त ज्ञायक से ज्ञायक में समा जाए तो इसे केवल ज्ञान मिल जाए, लेकिन अज्ञानी को केवल इस संसार के विशेष सुख मांगने का भाव आता है, तो वो आनंद की हर्षाति रेख वृत्तियों में एकत्व कर लेता है, तो केवल ज्ञान से च्युत हो जाता है, केवल ज्ञान नहीं मिल पाता। महाराज हमारा तो यही आनंद पर्याप्त है, यही आनंद पर्याप्त है। ये तो बहुत 72 फुट का कलेजा चाहिए इस तत्व को समझने के लिए, 72 फुट का कलेजा, सीना 72 फुट का, समझते हो? बहुत फौलादी, बहुत फौलादी है। सोगानी जी का एक पत्र, उसमें आता है किसी ने उनसे प्रश्न पूछा, भाई जी आपको अभी चौथे गुण स्थान में ही इतना आनंद आ रहा है, जब तुमको केवल ज्ञान होगा तब क्या होगा? तो वही उत्तर देती, तुम्हें ये चिंता है कि हमें केवल ज्ञान होगा तब क्या होगा, और हमें ये चिंता है कि केवल ज्ञान हो गया तो उसे हम रखेंगे कहां। अरे समझ में आया नहीं आया? क्योंकि परिणाम मात्र से उदास है। किससे उदास है? प्रश्न ये है कि यदि मैं इच्छा कौन करेगा, भीख कौन मांगेगा? इच्छा वो करेगा और भीख वो मांगेगा जिसने अपने को अपूर्ण देखा होगा। यदि पूर्ण देख लिया तो फिर इच्छा कैसी, और यदि इच्छा है तो कैसा पूर्ण? अरे समझ में आया नहीं आया? इसलिए वो आनंद की जो तरंग उठी वो भी अभी निर्विकल्प नहीं है। इसलिए त्यार पची एवा विचारो तो छूटी जाए केवा विचारो, कि हूं शुद्ध छू, हूं शुद्ध छू। कमाल कर दिया टोडरमल जी ने। मैं रागी छू कि चुप रहे बात मत कर, हूं सिद्ध छू, हूं शुद्ध छू, एवा विचारो पानी छूटी गया। केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासवा लागे। क्या शब्द आया? ये नहीं कहा कि चिन्ह मात्र का विचार करने लगा, विचार तो पण छूटी गया, चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगा। अब इसके बाद की चर्चा वचनगम में नहीं है, क्योंकि जो भोगे सो जाने। क्या कहा? जो भोगे सो जाने। छठी गाथा में ये कहा कि भगवान आत्मा परमत्त पण नथी, अप्रमत्त पण नथी। लेकिन आपने देखो विचार किया होगा, उसकी सेकंड लाइन में जब नहीं समझ पाया तो आचार्य कहते ज्ञात वो तो वही है, माने ज्ञानियों ने जो जाना वो तो वही है, अज्ञानी कैसे कह दे उसको प्रमत्त नहीं है अप्रमत्त नहीं है? कैसा है कि ज्ञानियों के ज्ञान में जो ज्ञात हुआ वो तो वैसा है। ये शांति पूर्वक बैठकर याद रखना, जिस समय आपको अकेले में आत्मा अच्छा लगने लगे, मैं दो तीन बात ज्ञानियों की बोल है ये भैया, मेरी ताकत नहीं है ये तो, जिस समय आपको अकेलापन अच्छा लगने लगे, नंबर एक, जिस समय आपको समय मिलने पर आपका उपयोग पापों में ना जाकर शुद्धात्मा के चिंतन में जाए, नंबर दो, नंबर तीन, दिनों दिन ज्ञायक का प्रेम बढ़ता रहे, नंबर चार, जगत से वैराग्य आता रहे, तो समझना आप सही दिशा में हैं। अब दिनों दिन प्रमाद बढ़ने लगे, नंबर एक, नंबर दो, समय मिलने पर उपयोग पापों में जाए, नंबर दो, नंबर तीन, अकेले में मंदा लगे, और बिना सुनाए स्वयमेव स्वरूप का चिंतन ना आए, तो आप सही दिशा में नहीं है। मार्ग तो सही है, मार्ग गलत नहीं है, मार्ग तो तीर्थंकरों का है, हमारे प्रयोग में गलती है। हम घर में रहते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं, मन नहीं लगता, हम किसी का साथ खोजना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमको आश्रय दे दे, हमको ऐसा लगता है कोई हमको केवल ज्ञान दे दे, हमें ऐसा लगता है कोई हमें मार्ग दिखा दे। इसलिए ये बिल्कुल सत्य साइकोलॉजी है, आपको अच्छी लगे तो स्वीकार करना, वरना रिटर्न विद थैंक्स। यहां से उठकर आप जाओ और आप अकेले रह जाओ और आपको ऐसा लगे कि अरे आज तो मुझे स्वरूप में समाने का अपूर्व अवसर आया है, तो समझना रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ने का सार्थक हो गया। वरना तो ऐसा लगे चलो गोष्ठी कर ले, थोड़ा थोड़ी चर्चा कर ले, चलो थोड़ी तत्व चर्चा कर ले, भैया चलो थोड़ा उससे सुन ले, थोड़ा इससे सुन ले, ये बात तो होगी लेकिन मूल आत्मा नहीं मिलेगा। और कर्णनियोग की भाषा में कहें तो हल्का फुल्का सुभाव करके कहीं मर के भूत बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा भवनत्रिक बनेगा ना, भू भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, क्योंकि अज्ञानी तो अज्ञानी को मुख्यतया वैमानिक देवों की भी नहीं है, उसमें चला जाएगा। भैया बुरा लग रहा है क्या? बोलो, ये आपकी बात नहीं, ये मेरी भी बात है, मैं आप आज आपके सामने बैठा हूं तो मेरे मन की सच्ची बात बता रहा हूं, मुझे गाने बजाने का बिल्कुल रस नहीं है। ये तो समझ लो वो कौन सी अशुभ घड़ी थी जिस समय स्मारक में पहला विधान हुआ। हम टोटल स्मारक में पढ़े तो जतीश भाई जी ने मेरे हाथ में माइक दे दिया और मैं गाने लगा। वो दिन के आज दिन मेरी गले में फांसी का फंदा पड़ गया। वो मेरा रस नहीं है, वो ये इस प्रदर्शन में आत्महत्या है, प्रदर्शन में आत्महत्या है, वो मूर्छा है उसमें। आप जानते हो सच्ची भक्ति भी वहां होती है जहां एकांत में जिनेन्द्र हैं और भक्त अकेला है। प्रभु के उस केवल ज्ञान को देखकर, केवली सर्वज्ञ को देखकर उसकी सच्ची भक्ति उमड़ती है उसके अंदर से। क्यों उमड़ती है? कि प्रभु आप जैसा केवल स्वरूप मैं भी हूं, इसलिए उसे भक्ति उमड़ती है, उसे भक्ति सच्ची उमड़ती है। तो इधर ये परनो सारे विचार छूट गए, मैं शुद्ध हूं ये विचार भी छूट गया, मैं शुद्ध हूं ये विचार भी स्वरूप में जाने में बाधक है। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि विचार आश्रव तत्व है और मैं चैतन्य तत्व हूं, और जब तक उसको ये विचार है तो वो चैतन्य में कैसे समाएगा। एक किसी का पति था, लौकिक एग्जाम्पल है, वो परदेश गया था और आज शादी हुई और परदेश पैसा कमाने गया और 7 साल हो गए वापस नहीं आया। उसकी पत्नी बिचारी रो रोकर मर गई कि मैंने अच्छा विवाह किया, इससे तो मैं घर में ही अच्छी थी। और ग्रंथों में ऐसा आता है, लौकिक ग्रंथों में, मनुस्मृति वगैरह अन्य मत के साहित्य में, कि यदि 7 वर्ष तक पति नहीं आए तो पत्नी खोजने जा सकती है, और फिर 9 वर्ष तक ना मिले तो या तो ब्रह्मचर्य ले ले या फिर उसे जो दिखाए सो करे। ऐसा अपने यहां जैन मत में तो पुनर्विवाह को स्थान ही नहीं है। इधर ऐसा हुआ कि एक परदेश से कोई भाई आया था, उसने कहा हमने तुम्हारे पति देव को देखा है। अब तो वो उल्लसित हो गए कि तुम मुझे लेकर चलो पति देव के पास मिलाने। तो वो एक बैलगाड़ी में उसके साथ अपने पति से मिलने जाती है। तो वो उस पुरुष से बात करेगी या नहीं करेगी, बोलो? और यदि वो नहीं करे तो वो ये कहेगा जब हम इतने बड़े रावण हैं तो तुम हमारे साथ जाई क्यों रही हो। वो जाएगा ही नहीं उसके साथ यदि वो उससे एलर्जी करेगी तो। वो उसके साथ जाता है, बात भी करता है, बात भी करती है, और दूसरे लोगों को ऐसा भी लगता है कि मानो जैसे यही इनके पति देव हो, बाहर वाले को क्या पता। और जब उसके पति उसको मिल गई तो वो पुरुष जिसने उसको उसके पति देव से मिलाया, तो पति देव के मिलन में वो बाधक है या साधक है? अरे बोलो, हैं? साधक है या बाधक? जिस समय पति दिखाई दिए उस समय वो पुरुष उसके पति के लिए, अब तो पति मिल गए, अब वो बाधक है या साधक है? बोलो। सब कुछ मैं ही बोलूं, मैं भी नहीं बोलता, चलो। अब तो वो बाधक है, बाधक है। अब तो ये भैया बहुत आपका उपकार है, बहुत आपका उपकार है, बहुत उपकार है। अब वो ये कहे कि मैंने आपको आपके पति से मिलाया है, इसके लिए तुम मुझे क्या पुरस्कार दोगे? कि मैं पुरस्कार के रूप में तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन तुम कहो कि तुम ही मेरे साथ आ जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस तत्व चिंतन और जिस तत्व विचार और जिस तत्व निर्णय के विकल्प से ये जीव स्वरूप के पास तक आया, लेकिन जिस समय स्वरूप साक्षात दिखाई देने लगा, वो विचार बाधक है या साधक है? बाधक है। वो विचार भी उस समय बाधक हो गया। इसलिए मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये विचार पण छूट ही गया, वो विचार। और कहीं कहीं ये भी लिखा मिलेगा आपको जिनवाणी में, चरणानियोग की भाषा में, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, ऐसा विचार करते करते स्वरूप में चला जाता है। तो उसका अर्थ क्या कि इन विचारों को छोड़कर स्वरूप में जाता है। क्या कहा? छोड़कर जाता है। वो विचार थोड़ी साधक होंगे, विकल्प से विकल्प नहीं मिटते। विकल्प की पृथकता, विकल्प की निस्सारता भाषित तो हो जैसे ही, तो स्वयं विकल्प बाहर रह जाते हैं। वो स्वरूप का अनंत प्रेम, वो विकल्प, सुनना और बात, विकल्प जो एक समय का है वो तो नजर आता नहीं। सत्य बात तो ये है कि वो विकल्प जैसी वह हुआ, वो निर्विकल्प रूप होकर परिणमित होकर स्वरूप में तन्मय हो जाता है। उस समय कोई ये पूछे कि साहब वो जो विकल्प आ रहे हैं, जो अबुद्धि पूर्वक राग हो रहा है, वो उसका कर्ता कौन है, वो किसका है? सौगानी जी से पूछा किसी ने कि ज्ञानी के जो राग होता है शुद्धोपयोग के काल में, राग भी है अबुद्धि पूर्वक, क्योंकि अभी तो अनंतानुबंधी कसाए गई है ना, तो फिर वो राग किसका, उसका राग का कर्ता कौन? सौगानी जी साहब कहते गंदी चीज का एड्रेस नहीं पूछते। नहीं आया समझ में? अरे जब मैं शुद्धोपयोग स्वरूप का आनंद ले रहा हूं और उस समय कोई ये पूछे कि राग किसका, और ज्ञानियों ने महात्माओं ने बहुत गजब गजब के उत्तर दिए हैं कि प्रकाश से कोई अंधकार का पता पूछे कि अंधकार कहां गया, तो प्रकाश ये कहता है मैंने अंधकार का चेहरा ही नहीं देखा। तो जिस समय स्वरूप में तन्मय होकर ज्ञानी स्वरूप का आनंद भोग रहे हैं, उस समय उन्हें राग नजर ही नहीं आता। तो ये प्रश्न ही निरर्थक हो गया कि राग किसका और राग का कर्ता कौन। और जब वो स्वरूप से बाहर आए, क्या बोला, जब वो स्वरूप से बाहर आए और जो अस्थिरता संबंधी राग है, उस समय किसी ने पूछा कि राग किसका, तो चूंकि राग में एकत्व नहीं है, राग में एकत्व नहीं है, तो वो ज्ञानी कहते हैं कि इस राग का कर्ता पुद्गल है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो नीचे परमान। ये लाइन और पूरी कर देते हैं, त्या सर्व परिणाम ते स्वरूप विषय एकाग्र थई प्रवर्ते। सर्व परिणाम एटले शू, कि श्रद्धा का परिणाम, ज्ञान का परिणाम, चारित्र का परिणाम, वीर्य का परिणाम, अनंत गुणों की सारी पर्याय स्वरूप में एकाग्र होकर प्रवर्तती है। सबको अलग अलग नहीं लगाना पड़ता। लोक में एक नियम है, जिसका पुण्य बढ़ जाता है, जैसी प्रधानमंत्री मोदी बने तो सारे विरोधी भी सब उनके पक्ष में आ गए। तो जिस ज्ञान को प्रधानमंत्री कहा है समस्त गुणों में, तो जब ज्ञान श्रद्धा और चारित्र स्वरूप में समा जाते हैं तो सारे गुण की पर्याय अनाथ होने से घबराती हैं। वो ये कहते कि यदि हमने स्वरूप का आश्रय नहीं लिया तो हमारा क्या होगा। इसलिए सारे गुणों के सारे परिणाम तन्मय होकर स्वरूप में समा जाते हैं, एकाग्र थे जाते हैं, सब उसके पक्ष में आ जाते हैं सारे। दर्शन ज्ञानादिक व ने प्रमाणादिक ना विचारपण विलय थी जाए। इसका अर्थ क्या, कोई निर्विकल्प युक्त व्यक्ति को पूछे कि तुम कौन से विषय में एकाग्र हो, निश्चय ने के विषय में या व्यवहार ने के विषय में। सुनना, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कि व्यवहार की तो बात ही नहीं, निश्चय ने का विषय तो रहता है लेकिन निश्चय ने का विकल्प नहीं रहता। क्या बोला, अरे बोलो मिलकर। कोई कहे कि निश्चय ने का विषय भी नहीं रहता तो क्या आकाश के फूल में एकाग्र है क्या, वो क्या असत्य में एकाग्र है। इसलिए जो अमरचंद्र आचार्य के एक साथ बहुत सारे कलश आए हैं, एक ने ये कहता है मैं नित्य हूं और एक ने ये कहता है मैं अनित्य हूं, एक ने ये कहता है कि मैं एक हूं, एक ने ये कहता है मैं अनेक हूं, एक ने ये कहता है मैं भेद हूं, एक ने ये कहता है मैं अभेद हूं। तो अनित्य का तो विकल्प नहीं, नित्य का भी विकल्प नहीं है। मैं नित्य छू, मैं नित्य छू, ये विकल्प नहीं है। नित्य स्वरूप आत्मा में तन्मय होकर आनंद भोगता है। क्या करता है, आनंद भोगता है, वो निर्विकल्प दशा कहलाती है। और ये निर्विकल्प दशा ही ज्ञानियों का साध्य है, पर ध्येय आत्मा है। क्या बोला? ये निर्विकल्प लघु अंतर मुहूर्त रहे दशा, उसका नाम मुनि दशा है। ये निर्विकल्प दशा क्षणिक हो तो वो दशा ज्ञानी की दशा है, और वो निर्विकल्प दशा अनंत काल तक रहे तो वो सिद्ध दशा है। इसलिए निर्विकल्पता ज्ञानियों के लिए साध्य है, और वो निर्विकल्पता आत्मा के लक्ष्य पूर्वक होती है। इसलिए आत्मा ध्येय है और बाकी सब जगत और विकल्प संसार है। इस पत्र को बहुत पढ़ना, गुरुदेव श्री के प्रवचन इसको पढ़ना। ये 3 दिवस के लघु प्रवास में केवल हमने वाचना की है इसकी, बहुत गहरा विषय है ये। आपके यहां तो हेमंत भाई जी यहां समय समय पर आते हैं, आपके यहां शायद पत्री चलाया भी होगा उन्होंने पूर्व में। इसको गहरा पढ़ना, ऐसा मत समझो कि पर्व समाप्त हुआ अब छुट्टी। जिस दिन आत्मा की खुराक हमारे प्रतिदिन जीवन में आएगी, समझना उस दिन हम सच्चे मुमुक्ष हुए हैं, बाकी सब मानसिक मनोरंजन है। बोलो जैन धर्म की।